परमेश्वर का नियम .org। परिशिष्ट 5C, दैनिक जीवन में सप्त के सिद्धांतों को लागू करना।
सिद्धांतों से व्यवहार की ओर बढ़ना।
पिछले लेख में हमने सप्त मानने की नींव, उसकी पवित्रता, उसका विश्राम और उसका समय का अध्ययन किया। अब हम उन सिद्धांतों को वास्तविक जीवन में लागू करने की ओर मुड़ते हैं। बहुत से विश्वासियों के लिए चुनौती सप्त की आज्ञा से सहमत होना नहीं, बल्कि यह जानना है कि आधुनिक घर, कार्यस्थल और संस्कृति में इसे कैसे जिया जाए। यह लेख उस यात्रा की शुरुआत करता है दो मुख्य आदतों पर प्रकाश डालकर जो सप्त मानना संभव बनाती हैं। पहले से तैयारी करना और कार्य करने से पहले ठहरना सीखना। साथ में ये आदतें बाइबिलीय सिद्धांतों और दैनिक व्यवहार के बीच सेतु बनाती हैं।
तैयारी का दिन। सप्त को बोझ के बजाय आनंद के रूप में अनुभव करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है पहले से तैयारी करना। शास्त्र में छठे दिन को तैयारी का दिन लूका 23:54 कहा गया है, क्योंकि ईश्वर के लोगों को निर्देश दिया गया था कि वे सप्त के लिए सब कुछ तैयार करने के लिए दुगना इकट्ठा करें और तैयार करें। निर्गमन 16:22-23 हिब्रू में इस दिन को योमा हखना कहा जाता है। तैयारी का दिन, यही सिद्धांत आज भी लागू होता है। पहले से तैयारी करके आप स्वयं और अपने परिवार को सब्द शुरू होने के बाद अनावश्यक काम से मुक्त करते हैं।
तैयारी के व्यावहारिक तरीके। यह तैयारी सरल और लचीली हो सकती है आपके घर की दिनचर्या के अनुसार। उदाहरण के लिए, सूर्यास्त से पहले घर को या कम से कम प्रमुख कमरों को साफ कर लें, ताकि कोई भी पवित्र घंटों के दौरान घरेलू कार्य करने के दबाव में न रहे। कपड़े धोने, बिल भुगतान करने या अन्य काम पहले ही निपटा लें। भोजन की योजना बना लें ताकि सप्त पर खाना पकाने के लिए भाग दौड़ ना करनी पड़े।
गंदे बर्तन सप्त के बाद तक रखने के लिए एक डब्बा अलग कर लें, या यदि आपके पास डिशवॉशर है तो सुनिश्चित करें कि वह खाली हो ताकि बर्तन रखे जा सकें लेकिन चलाए ना जाएं। कुछ परिवार तो सप्त के दिन एक बार प्रयोग होने वाले बर्तनों का उपयोग भी चुनते हैं, ताकि रसोई में अव्यवस्था कम से कम हो। लक्ष्य है सप्त के घंटों में यथासंभव कम अधूरे कामों के साथ प्रवेश करना, जिससे घर के सभी लोगों के लिए शांति और विश्राम का वातावरण बन सके।
आवश्यकता का नियम। सप्त के जीवन के लिए दूसरी व्यावहारिक आदत है जिसे हम आवश्यकता का नियम कहेंगे। जब भी आप किसी गतिविधि के बारे में अनिश्चित हों, विशेष रूप से अपनी सामान्य सप्त दिनचर्या से बाहर की किसी बात के बारे में, अपने आप से पूछें, क्या यह आज करना आवश्यक है या यह सप्त के बाद तक प्रतीक्षा कर सकता है। अधिकांश समय आपको एहसास होगा कि काम प्रतीक्षा कर सकता है। यह एक प्रश्न आपके सप्ताह को धीमा करने, सूर्यास्त से पहले तैयारी को प्रोत्साहित करने और पवित्र घंटों को विश्राम, पवित्रता और ईश्वर के निकट आने के लिए सुरक्षित रखने में मदद करता है। साथ ही यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ बातें सचमुच प्रतीक्षा नहीं कर सकती। दया के कार्य, आपात स्थिति और परिवार के सदस्यों की तत्काल ज़रूरतें। इस नियम का सोच समझकर उपयोग करके आप श्रम से रुकने की आज्ञा का सम्मान करते हैं बिना सप्त को बोझ बनाने के।
आवश्यकता के नियम को लागू करना।
आवश्यकता का नियम सरल है लेकिन शक्तिशाली है, क्योंकि यह लगभग किसी भी स्थिति में काम करता है। कल्पना करें कि आपको सप्त पर कोई पत्र या पैकेज प्राप्त होता है। अधिकांश मामलों में आप इसे पवित्र घंटों के बाद तक खोले बिना रख सकते हैं, या आप देखते हैं कि कोई वस्तु फर्नीचर के नीचे लुढ़क गई है। जब तक वह खतरा नहीं है, वह प्रतीक्षा कर सकती है। फर्श पर कोई दाग, पोछा लगाना भी आमतौर पर प्रतीक्षा कर सकता है। यहां तक कि फोन कॉल और टेक्स्ट संदेशों का भी उसी प्रश्न से मूल्यांकन किया जा सकता है, क्या ये आज आवश्यक है। गैर जरूरी बातचीत, अपॉइंटमेंट या काम किसी और समय के लिए स्थगित किए जा सकते हैं, जिससे आपका मन सप्ताह के दिनों की चिंताओं से मुक्त हो और आप ईश्वर पर केंद्रित रह सकें।
यह दृष्टिकोण वास्तविक आवश्यकताओं की अनदेखी करने का अर्थ नहीं है। यदि कुछ स्वास्थ्य, सुरक्षा या आपके घर के कल्याण के लिए खतरा है, जैसे खतरनाक फैलाव की सफाई, बीमार बच्चे की देखभाल या आपात स्थिति का जवाब देना, तो कार्रवाई करना उचित है। लेकिन अपने आप को ठहरने और प्रश्न पूछने के लिए प्रशिक्षित करके आप यह अलग करना शुरू करते हैं कि क्या वास्तव में आवश्यक है और क्या केवल आदतन है। समय के साथ आवश्यकता का नियम सप्त को करने
और न करने की सूची से सोच समझकर किए गए विकल्पों की लय में बदल देता है, जो विश्राम और पवित्रता का वातावरण बनाते हैं।
मिश्रित परिवार में सप्त जीना। बहुत से विश्वासियों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सप्त को समझना नहीं, बल्कि उसे ऐसे घर में निभाना है जहां दूसरे लोग नहीं निभाते। हमारे अधिकांश पाठक, जो सप्त मानने की पृष्ठभूमि से नहीं आते, अक्सर अपने परिवार में सप्त मानने की कोशिश करने वाले अकेले व्यक्ति होते हैं। ऐसी स्थितियों में जब कोई जीवन साथी, माता पिता या घर के अन्य वयस्क समान विश्वास नहीं रखते, तो तनाव, अपराध बोध या निराशा महसूस करना आसान होता है। पहला सिद्धांत है उदाहरण द्वारा नेतृत्व करना, न कि बलपूर्वक। सप्त एक उपहार और एक चिन्ह है, कोई हथियार नहीं। एक अनिच्छुक जीवन साथी या वयस्क बच्चे को सप्त मानने के लिए बाध्य करने की कोशिश नाराजगी पैदा कर सकती है और आपकी गवाही को कमजोर कर सकती है। इसके बजाय उसके आनंद और शांति का उदाहरण प्रस्तुत करें। जब आपका परिवार देखता है कि आप सप्त के घंटों में अधिक शांत, खुश और केंद्रित है, तो वे आपके अभ्यास का अधिक सम्मान करने लगते हैं और समय के साथ शायद आपके साथ जुड़ भी सकते हैं।
दूसरा सिद्धांत है विचारशीलता। जहां संभव हो, अपनी तैयारी को इस तरह समायोजित करें कि आपका सप्त मानना आपके घर के अन्य लोगों पर अतिरिक्त बोझ ना डाले। उदाहरण के लिए, भोजन की योजना इस प्रकार बनाएं कि आपके जीवन साथी या अन्य परिवार के सदस्यों पर सप्त के कारण अपनी खाने की आदतें बदलने का दबाव ना हो। विनम्रता से लेकिन स्पष्ट रूप से समझाएं कि आप किन गतिविधियों से व्यक्तिगत रूप से दूर रह रहे हैं, साथ ही उनकी कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार रहें। यह परिवार की आदतों के अनुसार समायोजन करने की इच्छा विशेष रूप से आपके सप्त मानने की यात्रा की शुरुआत में संघर्ष से बचने में सहायक होती है। साथ ही बहुत अधिक लचीला या समायोजित होने से सावधान रहें। जबकि घर में शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है, अत्यधिक समझौता आपको धीरे धीरे सप्त को ठीक से मानने से दूर कर सकता है और घरेलू पैटर्न बना सकता है जिन्हें बाद में बदलना मुश्किल हो। ईश्वर की आज्ञा का सम्मान करने और अपने परिवार के प्रति धैर्य दिखाने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करें।
अंत में, आप अपने घर के अन्य लोगों के शोर, गतिविधियों या समय सारिणी को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर भी अपने समय को पवित्र कर सकते हैं। अपना फोन बंद करके, अपना काम अलग रखकर और अपना रवैया कोमल और धैर्यवान रखकर, समय के साथ आपके जीवन की लय किसी भी तर्क से अधिक जोर से बोलेगी, यह दिखाते हुए कि सप्त कोई प्रतिबंध नहीं बल्कि एक आनंद है। यह श्रृंखला और परमेश्वर की व्यवस्था पर कई अन्य अध्ययन इस साइट पर पाए जा सकते हैं, परमेश्वर का नियम .org।